ओशन। प्रतिवर्ष हम सभी मधुबन आते हैं और अपने सारे वर्ष में किए हुए पुरुषार्थ और सेवा के हिसाब को देखते हैं, क्योंकि मधुबन की भूमि में स्वयं का निरीक्षण करना, स्वदर्शन करना बहुत सहज है। भल हम सभी ने इन आंखों से बाबा मम्मा को नहीं देखा, लेकिन इस भूमि में कण कण में उनके चरित्र समाये हुए हैं। भल हम सभी ने इन आंखों से बाबा मम्मा को ना देखा हो, लेकिन इस भूमि के अंदर कण कण में बाबा मम्मा के चरित्र समाये हुए हैं और बाबा मम्मा की ही प्रतिमूर्ति, उनकी प्रैक्टिकल में कार्बन कॉपी दादी जी और सर्व दादियां यहां हैं, तो उनकी तुलना में स्वयं को देखना सहज हो जाता है। और जब स्वदर्शन करते हैं तो हमें आगे भी किस लक्ष्य से चलना है, क्या पुरुषार्थ करना है, वो क्लियर हो जाता है। पिछले 3-4 वर्षों से हम सभी इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि हर सीजन में बाबा हमें स्वमान और सम्मान की बात जरूर करता है। पिछले वर्ष भी बाबा की सीजन शुरू हुई थी, पहली ही मुरली में बाबा ने हमें ये बात कही थी कि हमें स्वमान में रहना है और सर्व को सम्मान देना है। तो व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से स्वमान का महत्व है और संगठन में हमारा हार्मनी बनी रहे उसके लिए सम्मान का इम्पोर्टेंस है। इतिहास को भी हम देखते हैं कि द्वापर युग में जो भी साधु संत हुए, धर्मों के जो बड़े बड़े हुए, उन सब ने सबसे पहले यही काम किया, गृहस्थियों के सम्मान को तोड़ दिया ताकि वो उसको मानते रहे और उनके कहने पर चलते रहे। जैसे कि उन्होंने कहा कि वे आप गृहस्थी हैं, आप तपस्वी नहीं बन सकते हैं, बस आपका काम है गुरुओं को पूजना, मानना, उसके चरणों में जाना, शरण में जाना। तो इस प्रकार उनके स्वमान को उन्होंने खत्म किया ताकि वे उनके बन के रहे और उनके आधिपत्य को स्वीकार करें। इस प्रकार सामाजिक जीवन के अंदर भी क्या हुआ, पुरुषों ने स्त्रियों के स्वमान को खत्म कर दिया कि भी स्त्रियां क्या है, कुछ भी नहीं है, उसमें न बुद्धि है न शक्ति है, वो चरणों की दासी है। तो इस प्रकार बहनें जो सही अर्थ में आध्यात्मिकता जीवन में लाने वाली है, उनके ही स्वमान को खत्म कर दिया का, ताकि उनको दबाना, कंट्रोल में रखना ये सहज हो गया, है ना। तो द्वापर का इतिहास जब पढ़ते हैं तो रियलाइज होता है कि गिरावट क्यों हुई, पतन क्यों हुआ, क्योंकि हरेक ने स्वमान को ही तोड़ा और इस प्रकार समाज गिरता चला गया। तो बाबा ने आकर के इसलिए सबसे पहले अपना बनाकर हमारे स्वमान को जगाया, हमें रियलाइज कराया कि हम कौन हैं, किसके हैं और किस लिए हैं। ये तीन बातें सदा बाबा ने अपने आप में, हम बच्चों में जगाई कि हम कौन हैं, किसके हैं और किस लिए हैं इस दुनिया के अंदर। जिसको बाबा कहते हैं कि मैं कौन की पहली को बाबा ने हल किया, मैं कौन हूं, हमें रियलाइज कराया बाबा ने। और बाबा ने हमारा स्वमान जगाया। यज्ञ के इतिहास को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शुरू में जो जो बहनें समर्पित हुई, बाबा ने उन्हों को ड्रेस भी चेंज कराया, हाफ पैंट और शर्ट पहनाया उस समय, ताकि मैं स्त्री हूं ये कॉन्शियसनेस खत्म हो जाए। जो देह भान की स्थिति थी, जो चोटी बनाते थे, तो बाबा ने कहा कि नहीं, आप ऋषि है, बाल खुले रखते थे और तपस्या करते थे और प्रतिज्ञा कराई थी कि भी जब तक स्वराज्य स्थापन ना हो तब तक हम चोटी नहीं बांधेंगे। तो जो स्त्रीपन की कॉन्शियसनेस थी, जिसके कारण हमारे अंदर नाजुकता थी, वो बाबा ने खत्म की कि नहीं, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, आप शक्ति है, आप आत्मा है, आप शक्ति है। नारी शक्ति कहते हैं ना, स्त्री शक्ति कहते हैं। तो शक्ति कौन? शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, मैं आत्मा शक्ति हूं। ये ज्ञान दे करके और बार बार इसकी रियलाइजेशन करा करके बाबा ने स्त्री भान से, पुरुषपन के भान से मुक्त कराया। और क्यों बाबा ने उस समय सभी समर्पित को कह दिया था कि आपको नाक में, कान में, गले में, हाथ में कोई भी गहने नहीं पहनने? तो एक भाई ने बाबा से पूछा कि आप क्यों नहीं इन बहनों को कोई गहने पहनवाते हैं? बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। बाबा ने कहा कि देखो, कोई भी जानवर को वश करना हो तो क्या करते, गाय को, भैंस को, बैल को, घोड़े को कंट्रोल में करना हो तो क्या करते, गले में, नाक में रस्सियां डालते ना, और उससे वो उसको कंट्रोल में लाते। तो बाबा ने उसको कहा कि ये रॉयल रस्सियां हैं जो कान में, गले में, नाक में पहनते हैं, और इससे वो स्त्री भान में आ जाए। और जिसका दिया हुआ स्वीकार करते हैं, समझो शादी होती है तो भारत में ये रस्म है कि वो अपने तरफ से कोई गहना पहनवाएंगे, है ना, नाक में या अंगूठी या हाथ में चूड़ी या गले में वो मंगल सूत्र, ऐसा कोई भी गहना पुरुष के तरफ से भेजा जाता है और वो स्त्री स्वीकार करती है, मीन्स कि आज से वो उसकी हो गई, उसके वश हुई। तो बाबा ने कहा कि ये तो सब रॉयल रस्सियां हैं किसी को भी अंडर कंट्रोल करने के लिए, इसलिए बाबा ने इन बच्चियों को मुक्त रखा है कि वो शक्ति है, ऑलमाइटी से जुड़ी हुई है, शिव शक्ति है। तो इस प्रकार बाबा ने देह भान को मिटाया और स्वमान की स्विच को ऑन किया कि आप कौन है, सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, आप विशेष आत्माएं। और न सिर्फ बाबा ने उनको ज्ञान की रीति से स्वमान जगाया, प्रैक्टिकल बाबा ने उसी दृष्टि से भी देखा और वो स्थान और शान भी, वही नारी ही स्वर्ग का द्वार है। और इन्हीं माताओं कन्याओं से मुझे स्वर्ग का द्वार खोलना है। उस समय बाबा ने हमारे अंदर विश्वास रखा, जिस समय हमारे में कोई शक्तियां नहीं थी, कोई योग्यताएं नहीं थी, समाज की दबी हुई एक साधारण महिलाएं, लेकिन बाबा ने उसी ऊंची नजर से देखा जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बताया, और ब्रह्मा बाबा ने उसी ऊंची नजर से देखा, वही ऊंचा स्थान यज्ञ में दिया और उनसे बाबा ने कार्य करवाया। आज उसका रिजल्ट हम देखते हैं कि वही साधारण समाज में अबला कही जाने वाली बहने, बाबा ने उसको शिव शक्ति, योगिनी, तपस्विनी, महान नारियां बना दिया। इसलिए बाबा ने कार्य की शुरुआत ही स्वमान से की। और हम सबका अनुभव होगा कि जब हमारा स्वमान जगा हुआ होता है, मीन्स मुझे कांस्टेंट उनकी स्मृति है, तो मेरे में साधारणता या मेरी चलन में हल्कापन नहीं आएगा। चाहे कोई हमारे सामने है या नहीं, कोई देखने वाला है या नहीं, हम अकेले हैं, दूर है, कहीं भी हैं, लेकिन अगर मुझे ये स्वमान में मैं स्थित हूं कि मैं कौन हूं, किसकी हूं, मैं क्या क्या हूं, मैं किस कार्य के लिए अब निमित्त, तो आप अनुभव करेंगे कि हमें कोई देखने वाला हो या ना हो, लेकिन हमारी चलन, हमारा कर्म, हमारी स्थिति सदा श्रेष्ठ रहे। शुरू में बाबा ने जब सेवा पर भेजा था तो उस समय कोई थोड़ी यज्ञ में इतना कोई धन था, कोई साधन थे या कोई संबंध संपर्क, कुछ भी नहीं था। बाबा ने सिर्फ ट्रेन का भाड़ा दे करके भेजा था, लेकिन बाबा ने उसके स्वमान को जगाया हुआ था कि आप क्या नहीं कर सकते, आप शिव शक्तियां हो, भगवान के बच्चे हो, स्वयं भगवान तुम्हारे साथ है, आप क्या नहीं कर सकते। इवन यज्ञ के अंदर दादियां सुनाती है कि व्यक्तिगत जीवन में तो हम बहुत सुख से पले हुए थे, हर कोई एक छोटे से परिवार में 5-10-15 सभ्यों के परिवार में चला हुआ होता था, पर हम जब यज्ञ में आए तो हम 300-300 लोगों का खाना बनाते थे, 300-300 के कपड़े धोते थे, क्योंकि हमें ये स्वमान था कि हम ऑलमाइटी के बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं। तो बियॉन्ड कैपेसिटी, शरीर की शक्ति से भी अधिक काम हम कर लेते थे, क्योंकि हमें नशा होता था कि भाई हम कौन है, हमारे साथ कौन है। तो जब स्वमान जगा हुआ होता है तो शरीर में भी शक्ति आ जाती है और हम अपनी हैसियत से भी अधिक कार्य कर सकते। वही बात सेवा के क्षेत्र में भी हुई जब बाबा ने उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेजा। दुनिया में क्या सिस्टम है, कैसे काम करना होता है, ऑफिसों में कैसे जाना होता है, वीआईपीज को कैसे मिलना होता है, दादियां कहती हमें तो कुछ भी पता नहीं, लेकिन हमें ये नशा था और स्वमान था कि हम भारत को पावन बनाने का काम कर रहे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हमें कोई कैसे ना कर सकता है और कोई भी काम कैसे रुक सकता है। तो बिना झिझक, बेधड़क, डर या कोई संकोच के बिना हम किसी के भी पास चले जाते थे और बड़ी दृढ़ता से, पावर से बात करते थे। वो भी देखते रह जाते थे कि भाई ये छोटी लड़कियां क्या बात करती, पर हमारा प्रभाव इतना पड़ता था, हमारे नशा देख के वो सब सहयोगी बन जाते थे और जो स्थान साधन चाहिए वो दे देते थे। तो उस समय साधन नहीं थे, साधना का बल। हमारी दुनिया में कोई इतनी स्टैंडिंग नहीं बनी थी, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप में ऊंचा उठा हुआ है। तो इस प्रकार अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ के अंदर भी कोई हमें कहे तब हम करें, कोई हमें करेक्शन दे तब हम बात ठीक करें, जब आप स्वमान में होंगे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपको खुद को ही सेंस होगी, वो समझ होगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑटोमेटिक बुद्धि में स्पष्ट रहे। इसलिए बाबा कहते अपने आप से बार बार पूछो कि मैं कौन हूं। कितने टाइटल बाबा ने हमें दिए, ये सारे स्वमान है। हम कितने ऊंचे कर्तव्य के लिए हैं। तो बाबा कहते जब आपको ये स्मृति रहेंगी, चलो एक मूल चीज, बाबा कहते हैं सबसे पहला स्वमान कि मैं ईश्वरीय संतान, बस ये अगर मुझे स्मृति है तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर मैनर्स आएंगे, मेरी चलन चरित्र कैसा होना चाहिए मुझे खुद ही अवेयरनेस आ जाएगी, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं इस वर्ल्ड ड्रामा की हीरो एक्टर, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। व्यक्तिगत स्वयं से कनेक्टेड कितने स्वमान बाबा दे। और हम किसके हैं, अब कोई देहधारी के हम नहीं हैं, हम भगवान के बच्चे। आज भक्ति में भी हम सुनते हैं कि भक्तों के भी कार्य भगवान ने किए, कैसे कैसे समय में आकर भगवान ने उनको मदद की, कितने किस्से हर भक्त के हम सुनते हैं। हम तो उसके डायरेक्ट गोद लिए हुए बच्चे, हम अकेले नहीं हैं, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। जो जितनी विशेष व्यक्ति से रिलेटेड होता है उसको नशा होता है, स्वमान होता है। भाई हम प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन में हैं, हम प्रेसिडेंट के रिलेशन में, हम उसके फैमिली मेंबर है, मेरा उनसे क्लोज कनेक्शन है ना। तो कितना अपने में हिम्मत रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं कि भाई कुछ भी काम हो आप मुझे कहना, मेरा प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से मेरी बहुत नजदीक की पहचान है। हमारी पहचान किससे है, हमारे रिलेशन किससे है, है ना। बाबा कहते हैं ना, पीए टू गॉड, भगवान से मिलाने वाले तुम बच्चे, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है ना। हर एक को अपनी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का नशा होता है कि भाई हम इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव, हम तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, हमारा रोल तो वही है ना। अब और ये रियलिटी है ना, ये झूठी खुद को खुश करने की बातें नहीं। कई भाई बहन क्या कहते हैं, सोचते हैं कि बाबा ऐसे ही हमें ऊपर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते, ऐसे ही क्यों बाबा चढ़ाएगा, बाबा को क्या जरूरत है ना, हमारे से बाबा को क्या चाहिए। पर ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। तो जब सत्य बातें स्वमान की हम लेते हैं, तो मेरे अनुभव से हम साधारण नहीं हो सकते। हम अपनी स्थिति में, चलन में, व्यवहार में विशेष बनेंगे, क्योंकि हम सामान्य है ही नहीं। हमें खुद को ही पता है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो स्वमान में रहना, इसका अर्थ मैं समझती हूं कि यही है कि हमारा अपने जीवन का पर्पस, वैल्यू और विजन क्लियर होना, कि मेरा लक्ष्य क्या है, विजन क्या है, मेरा जीवन का पर्पस क्या है, और किस मूल्य के साथ मुझे इस दुनिया में चलना है या प्रैक्टिकल में मुझे काम करना है। तो हम बहुत अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहेंगे, हमें हमारा अटेंशन और तरफ नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक जो स्वमान में रहेगा, उसका आहार विहार व्यवहार, उसका पहनना ड्रेस, उसका संग, क्या हमें पढ़ना चाहिए, मैं समझती हूँ जीवन की हर बात अपने आप ऊंची हो जाती है, व्यवस्थित तो हो जाती है। हमें एक एक चीज सुधारने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हम अपने सही स्थिति में स्थित तो हो जाते हैं, तो अपने आप हमारा जो सब कुछ है, हमारे जीवन की प्रवृत्तियां, कारोबार, वो अपने आप रिसेट व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए रोज की मुरली से हमें स्वमान निकालना चाहिए कि आज बाबा ने कौन सा स्वमान दिया। रोज की मुरली से रोज के पुरुषार्थ की योजना हम बना लें कि भी आज बाबा ने हमें क्या स्वमान दिया। जैसे आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सर्विसेबल बच्चे है ना, उसमें ये आदत नहीं होगी। तो रोज की मुरली से मैच करेगा ना, भाई सुबह की मुरली में बाबा ने कहा क्या, और हम दूसरा ही और सम्मान लेके चलेंगे, तो बाबा से हमारा दिनचर्या, उस दिन की योजना, पुरुषार्थ की मैच नहीं करती। पर रोज की मुरली से, मुझे याद है मम्मा के दिन जब भोग लगाया था 24 जून 2005, तो मम्मा ने यही मैसेज दिया था कि मुरली क्लास के बाद शांति से 5-10 मिनट बैठकर आप उसी दिन के पुरुषार्थ की योजना बना कि आज बाबा ने क्या कहा है, अभ्यास के लिए क्या कहा, स्वमान के लिए क्या कहा, सेवा के लिए क्या कहा, दिनचर्या के लिए क्या कहा, और वो योजना बनाकर सारा दिन हम चलते हैं। तो बाबा का कहना और हमारा उसी दिन करना, तो हमें अनुभव होता है कि हम ट्रैक पर चल रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ की गाड़ी बिल्कुल बाबा कहे उसी पटरी पर चल रही है। और ये बार बार रियलाइज करे कि मुझ स्व माना मैं माना आत्मा, मुझ आत्मा का मान किस में है, मुझ आत्मा का मान किस में है, स्व मान माना मुझ आत्मा का मान किस में है, सत्य बने रहने में है, शुद्ध बने रहने में है, शांत बने रहने में है, ज्ञान स्वरूप बने रहने में मुझ आत्मा का मान है, उसमें मेरा मान है। ये है खुद ही खुद को इज्जत देना, अपने महान को पहचानना, तो हम उस स्थिति में बने रहे। भी अवस्था बिगाड़ना, दुखी होना, अशांत होना, उसमें मुझ आत्मा की वैल्यू नहीं है। मुझ आत्मा की वैल्यू किस में है, अपने ओरिजिनल गुणों में स्थित रहने में, अपने कर्तव्य को निभाने में, जो बाबा कहे वो करने में, उसमें मेरी वैल्यू। और प्रैक्टिकल में समझो, आज मैं मधुबन में हूं तो मुझे कांस्टेंट ये अवेयरनेस रहे कि मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है, यहां मेरा स्थान क्या है और उस हिसाब से मेरा कर्तव्य क्या है। अगर हम हरेक अपने स्थान को समझे और अपने कर्तव्य को हम निभाएं, तो हमारा यज्ञ कितना भी बड़ा हो जाएगा, संगठन कितना भी बड़ा हो जाएगा, कारोबार कितना भी बेहद का हो जाएगा, फिर भी वो अपने आप व्यवस्थित चलता रहेगा, क्योंकि हम हरेक को स्पष्ट है कि मेरा स्थान क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। कई बार हमें अपना यथार्थ एस्टिमेशन नहीं होता है, या तो हम अपने आप को लो एस्टिमेट कर देते हैं या ज्यादा एस्टिमेट कर देते हैं। जब स्वमान में होते हैं तो हम अपने आप को यथार्थ एस्टिमेट कर सकते हैं, और उस समय आप अनुभव करेंगे कि हमें अपने स्वरूप में ही आनंद है, अपनी स्थिति में ही आनंद आएगा, क्योंकि वो ऊंचाई, वो महानता हमारी अंदर से बनी रहेगी। क्यों बाबा को हमें कहना पड़े, क्यों दादियों को हमें कहना पड़े कि आपको ये नहीं करना चाहिए, है ना? जो स्वमान में होगा उनको तो स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे अनुभव से स्वमान हमारे सद विवेक को जगाता है, दिव्य बुद्धि को जागृत रखता है, तो किसी का भी संग, वायुमंडल, किसी की भी बातें ना हमें भ्रमित कर सकती है ना मिसगाइड कर सकती। हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि मैं ये करूं या ना करूं। हमारा अपना सद्विवेक जागृत रहेगा, क्योंकि मैं स्व में स्थित हूं। इसलिए ये है अपने आप को बार बार स्वयं ही ऊंचा उठाने की विधि, जो बाबा कहते हैं कि अपनी उन्नति का आपे ही प्रबंध करो। और कोई हमारी उन्नति क्या करे, हमें किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, हमें चांस नहीं दिया, हमें मौका नहीं दिया, हमें स्थान नहीं दिया, ये बात ही नहीं रहेगी। हम अपनी ही स्थिति से ऊंचे हैं, आगे हैं। और यथार्थ स्वमान की निशानी है हमारे विचार सदा श्रेष्ठ चलेंगे। हल्के साधारण संकल्प तभी आते हैं जब हमें स्वमान नहीं है, हमें नशा नहीं है, तब हमारे विचार हल्के साधारण होते हैं। अगर हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नशा चाहिए, स्वमान चाहिए। और स्वमान के अनुरूप जीवन होने से वो स्वमान स्थायी रहे। स्वमान माना केवल मानसिक रूप से ऊंचाई, ये संकल्प लेने की बात नहीं है, लेकिन जब हम स्वमान में रहना, स्थित होने की बात करते हैं, माना उसके अनुरूप मन वचन कर्म हो। जब उसके अनुरूप मन वचन कर्म है तो वो स्थायी रहे। बार बार हम नीची साधारण हल्की स्थिति में नहीं आ जाए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हम सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा को जब भी देखा, जहां भी देखा, विशेष देखा, यानी बच्चों के सामने विशेष, मेहमानों के सामने विशेष, और पर्सनल रूम में दिनचर्या में कॉमन नहीं। बाबा के लिए ये कहा जाता है कि जब भी देखा, जहां भी देखा, बाबा अपने आप में विशेष, क्योंकि बाबा अपने स्वमान से महान थे। सब मेरे में भावना रख के बैठे इसलिए मैं व्यवस्थित रहूं, लोग ठीक से मिलने आए हैं इसलिए मैं ठीक रहूं, नहीं। अब मुझे स्वयं ही अपनी महानता में रहना। इसलिए हम स्वयं पुरुषार्थी बन जाएं, हम स्वयं की शक्ति से चलें, हमारे अपने आप में ही जागृति आ जाए, उसके लिए बाबा हर सीजन में हमें कहता है कि स्वमान में रहना है। तो मैं अपनी इच्छाओं को भी कंट्रोल कर सकूंगी, रॉन्ग थॉट्स को मैं निकाल सकूंगी कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, है? जैसे लौकिक दुनिया में इंसान को होता है कि भाई मैं इस जाति का हूं, मैं इस कुल का हूं, मेरे पिता का समाज में बहुत ऊंचा मान है, बहुत ऊंची पोस्ट पोजीशन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहां खुद को देह समझते हैं, इसलिए बॉडी कॉन्शियस वाला अभिमान होता है। यहां हम सोल कॉन्शियस है। यहां अगर हम ये समझेंगे कि भाई हमारा कुल कौन सा है, बाबा कहते हैं ना कि किसके बच्चे हो, ईश्वरीय कुल के हो, है ना, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो, तो हमें अपने आप होगा कि भाई हम क्या खा सकते हैं, नहीं खा सकते, क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते, हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो स्वमान सेल्फ डिसिप्लिन लाता है। और अपने आप जब हम उस ऊंचाई में हैं, तो सबके प्रिय बनेंगे, बाबा को भी प्रिय लगेंगे। और जब मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जागृत है, मैं स्वमान में स्थित हूं, तो मुझे अन्य के लिए भी ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट होगा। क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू होगी कि ये भी सामान्य नहीं है, ये भी भगवान के बच्चे हैं, इन्होंने भी भगवान को पहचाना है, ये भी पवित्र योगी है, ये भी बाबा के कार्य के मददगार है। तो हमें सामने वाली आत्मा की वैल्यू होगी, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, उसको एनकरेज करेंगे, अन्य को रिस्पेक्ट देना माना उसकी वैल्यू करना, उसको एनकरेज कर, क्योंकि जो स्वयं के स्वमान से महान है वो अन्य को भी महान दृष्टि से ही देखेगा, क्योंकि वो खुद अपनी ऊंचाई में है तो उसे हरेक की ऊंचाई ही नजर आएगी। और बाबा ने हमें हर बार ये बताया है कि तुम बच्चे कौन हो, ब्राह्मण परिवार क्या है। बाबा कहते हैं ना कि दुनिया के बड़े बड़े धर्म नेता, अभिनेता, राजनेता, वैज्ञानिक, दुनिया में जिसको बड़े बड़े माना जाता है, उन्होंने भी भगवान को नहीं पहचाना, वो इस साधारण नाम रूप वाले बाबा के बच्चों ने पहचाना है। तो भल शरीर के नाम रूप से साधारण है, पर वो आत्माएं विशेष है, क्योंकि परखने की आंख है, विवेक का नेत्र जागृत है, इसलिए उन्होंने सत्य को पहचान लिया है। तो ये साधारण नहीं, तो ऑटोमेटिक आप सबको सम्मान देंगे, उनके साथ रफ डफ बात नहीं करेंगे, रूड व्यवहार नहीं करेंगे। हम किसी से भी हल्का रफ व्यवहार कब करते हैं, जब हम उसको कुछ नहीं समझते हैं और अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। मींस खुद में ईगो आ जाता है और उसको हम हल्की नीची नजर से देखते हैं, पर ब्रह्मा बाबा को देखे और टोटल बाबा के कारोबार को आप देखिए कि बाबा का कार्य कोई एक से नहीं होना है, हमें सबके सहयोग की आवश्यकता। नंबर वन ब्रह्मा बाप के होते हुए शिव बाबा ने अनेक ब्राह्मण बच्चों को भी पैदा किया। अगर एक से ही काम होना होता था तो बाबा ने एक बच्चों को क्यों अपना बनाया, है ना? क्योंकि हरेक के योग, सहयोग, स्नेह, सेवा, विशेषता, गुण, कला मिलाकर बाबा का काम होना, इसलिए बाबा ने हरेक को वैल्यू दी, क्योंकि हरेक की आवश्यकता है, हरेक के सहयोग की जरूरत है, ये ब्रह्मा बाबा ने महसूस किया और इसलिए हरेक को वेलकम किया, हरेक को रिस्पेक्ट दिया। कई बार हमें अपनी कोई समर्थी शक्ति का अभिमान आ जाता है, समझो हमारे पास धन ज्यादा है तो हम सोचेंगे कि हम ही ये काम कर लेंगे, परंतु नहीं, एक से नहीं होना है। शुरू से यज्ञ का नियम क्या है, यज्ञ की विधि, कार्य करने की रीति क्या है, कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, बुंद बुंद तालाब भरना है। इसलिए हमें अपनी कोई भी शक्ति योग्यता का अभिमान न आ जाए, ये हमें सदा ध्यान रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हरेक के विचार को भी सम्मान। कई बार बहुत देखने में साधारण आत्माओं से भी बहुत विशेष विचार हमें मिलते, विशेष आइडियाज मिलते, क्योंकि हरेक के जीवन के अपने अनुभव है। बाबा कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपना विचार देता है उस समय वो अपने विचार को सही समझता है तब तो वो अपना विचार देता है। अगर हम उसका न सुने, कट कर दे, तो उससे इंसल्ट लगता है और हमारा अभिमान दिखाई देता है। बेशक हम उसको सुने, है ना? फिर क्या यथार्थ है वो हम समझाएं। करना तो हमें राइट ही है, पर एटलीस्ट हम उसको वैल्यू दें। तो हमारा आपसी संगठन बना रहे, ये उसके लिए आवश्यक है कि हम एक दो को सम्मान दें। दुनिया सारी तो हमें अब सम्मान दे रही है ना? एक समय ऐसा था कि दुनिया हमें मान नहीं देती थी, दुनिया हमें स्थान नहीं देती थी, है ना? अब वो समय आ चुका है कि सारी दुनिया ब्रह्मा कुमारी को मान दे रही है। हर एक समझ रहे हैं कि ये संस्था अपने आप में विशेष है, ये चरित्रवान लोग है, ये सच्चे लोग है, ये ऊंचा और अच्छा कार्य कर, तो सारी दुनिया हमें मान दे रही है, स्वयं भगवान हमें मान दे रहा है, और हम आपस में क्या कर रहे हैं? हम भी तो आपस में एक दो को मान दे, है ना? पर सम्मान इसलिए नहीं दे पाते हैं कि हम रोज साथ रहते हैं, इसलिए एक दो को साधारण दृष्टि से देखते हैं। साथ रहते हैं इसलिए एक दो की कमी पेशी को जानते हैं, और वो कमी हमारी बुद्धि में रख लेते हैं, उस नजर से देखते हैं, इसलिए हम मान नहीं दे पाते। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा ने सारी दुनिया से ढूंढ ढूंढ करके हम सभी को मिलाया, परिवार बाबा ने बनाया। बाबा कहते हैं वन वन की काठी बाबा ने इकट्ठी की, कांटों के जंगल से चुन चुन करके फूलों की माला बनाई बाबा ने, हमें समीप लाया, परिवार बनाया। तो वो इसलिए तो नहीं बनाए ना कि हम एक दो की कमजोरी ही देखते रहे। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपस में भी जिसके साथ रोज रहते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, रोज जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, वहां हमें और अलौकिक बनना है, दिव्य बन के चलना है। आपस में हम साधारण नहीं बन जाए, है ना? बल बाबा ने हमें समीप लाया है, इकट्ठा किया है एक दो की विशेषता को देखने के लिए, एक दो से हिम्मत, बल, प्रेरणा प्राप्त करने के, है ना? बाबा का उद्देश्य क्या है? हम सबको एकत्रित करने का, कि हम मिल करके पुरुषार्थ करें, हम मिल करके सेवा करें। एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता। मुझे संपूर्ण बनना है तो मुझे सर्व के साथ की आवश्यकता है, क्योंकि मैं परफेक्ट हूं या नहीं उसका प्रैक्टिकल परिणाम तो मुझे साथियों से ही मिलेगा। जैसे बाबा नहीं कहते कोई जंगल में जाकर कहे कि मुझे क्रोध आता ही नहीं है, मैंने तो क्रोध पर विजय पा लिया, तो वो कोई शक्ति नहीं है। जहां कोई बात नहीं, परिस्थितियां नहीं, कोई कारण नहीं, वहां मैं कहूं कि मैंने विजय पा ली, वो कोई शक्ति नहीं है, है? लेकिन संगठन में, परिवार में, है ना, जहां हम रहते हैं, जीते हैं, काम करते हैं, है ना, वहां ही हमें पता चलता है कि हम कितना शांति से, प्यार से कर सकते। तो मुझे ये लक्ष्य याद रहे कि बाबा ने ये परिवार क्यों रचाया, एक दो की विशेषता से बल प्राप्त। इसलिए बाबा कहते हैं कि संगठन में रहते हुए भी व्यक्तिगत पुरुषार्थ में रहो, तो आपकी अपनी ऊंचाई बनी रहेगी, अलौकिकता बनी रहेगी। रहना हमें संगठन में, पर मैं अपने इंडिविजुअल पुरुषार्थ में भी रहूं, मेरा अपना लक्ष्य हो, मेरे अपने कुछ सिद्धांत जीवन के बनाए हो, मेरी अपनी जीवन की धारणाएं बनाई हो, तो क्या होगा कि आप किसी के भी संग में ऐसा ऐसा करने नहीं लगेंगे कि नहीं, मेरा अपना ये सिद्धांत है। अपना पुरुषार्थ, अपनी स्थिति को बना रखे रहे, तो संगठन के सहयोग की हमें आवश्यकता है, पर मेरा अपना भी तो योग हो ना। संगठन का सहयोग, मेरा स्वयं का पुरुषार्थ और योग भी। तो आपको संगठन की कोई ऊपर नीचे आए, आपको लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं करेगी। भल हम नंबरवार हैं, वैरायटी है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जब तक मैं परफेक्ट बनूं, मुझे सबके सहयोग की आवश्यकता है, मुझे सबकी नजर मेरे पर रहे वो आवश्यक है। कई बार हमें अपनी बात अपने को नहीं दिखती है, संगठन में रहने से, उनकी मदद से वो हमें दिखाई देती है, रियलाइज हो। तो बाबा ने ये संगठन हमें किस लिए बना के दिया है कि एक तो हम स्वयं को संपूर्ण बनाएं और दूसरा हम मिल करके बाबा के कार्य को भी संपन्न करें। हमें बाबा के कार्य को भी तो संपन्न करना है, केवल स्थिति तो नहीं बनानी, दोनों काम करने। तो केवल एक की मेहनत से नहीं होगा, हमें तो सारे विश्व का सहयोग चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण परिवार भी नहीं, सबका। और कई बार हम स्वमान इसलिए नहीं दे पाते हैं कि हमें सूक्ष्म में द्वेष होता है एक दूसरे, एक दो की ऊंचाई को हम मान इसलिए नहीं देख पाते कि हमें ईर्ष्या होती है अंदर से। तो हमारी यूनिटी बनी रहे, हमारा संगठन शक्तिशाली बना रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम एक दो की इज्जत रखें, एक दो को मान दें। जब दुनिया हमारी ऊंचाई को मान दे रही है, तो हम आपस में एक दो की ऊंचाई को मान दें, नहीं तो लोग हमें तोड़ देंगे। लोग हमें तोड़ देंगे, है? इसलिए बाबा कहते हैं कि सतयुग भी परिवार है, वहां भी संबंध में आना है। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, भविष्य में भी साथ साथ आना है, अनेक जन्म हमें साथ साथ आना है। संसार प्रवृत्ति मार्ग का बना है, निवृत्ति मार्ग का नहीं बना है। तो एक दो से किनारा करके हम योग नहीं कर सकते। कई बार हम एक दो से नाराज हो जाते हैं, परिवार से किनारा कर लेते हैं, सेवा से किनारा हम कर लेते हैं, पर सेवा से किनारा करके कोई योग नहीं कर सकता है। अपने आप चेक करना, समझो मेरी और आपकी नहीं बनती है, उसके कारण मैं सेवा ना करूं, आपसे दूर रहूं, और मैं सोचूं कि अब मैं योग करूंगी, वो योग नहीं हो सकता है। मुझे अंडरस्टैंड करना होगा और साथ में ही चलना है, मुझे उसको समझना होगा, अपने आप को समझना होगा। कहते ना कि एक आश्रम था, उसमें 5-7 संत रहते थे, आपस में उनका संगठन टूट गया, उसके कारण वो आश्रम जो बहुत अच्छा चलता था वो धीरे धीरे बंद होने की तैयारी में आ गए। तो नजदीक एक और महान व्यक्ति ने देखा कि इतना अच्छा ये आश्रम था, बहुत अच्छा चल रहा था, अब आजकल ये अब तो कोई नहीं आ रहा है, टूट रहा है ये। उसने वो पांचों ही जो साधु संत आपस में रहते थे उनको बुलाया और कहा कि भी मुझे ऐसा स्वप्न में दिखाई दिया कि आप में से कोई महान आत्मा है। तो जब ऐसा उनको कहा गया तो हर एक अंदर अंदर एक दो के लिए सोचने लगे कि ये महान लगता है, इसके अंदर ये विशेषता है। हर एक दो की विशेषता देखने लगे और हर एक में एक दो को भाई ये महान हो सकता है, ये महान हो सकता है। तो इससे फिर एक दो के लिए प्यार जागृत हुआ, रिस्पेक्ट जागृत हुआ और फिर से आपस में उनकी यूनिटी बन गई। तो बाबा तो कहते हैं ना कि भी माला का मणका बनना है ना, मणका व्यक्तिगत अपने आप में बहुत अच्छा है पर गले में तो माला पिरोई जाएगी ना। एक फूल अपने आप में बहुत सुंदर है, उनकी अपनी सुंदरता है, पर हार भगवान के गले में तो हार पहनाया जाता है और उसकी अपनी वैल्यू है, है ना? तो इस प्रकार बाबा कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से भी महान बनना है और संगठित रूप से भी महान बनना है। तो व्यक्तिगत रूप से महान बनने में स्वमान आता है और संगठित रूप से महान बनने में सम्मान की बात आती है। व्यक्तिगत महान बनने के बाद भी मुझे सबके साथ जुड़कर के चलना है, नहीं तो वही महानता अलग हो जाने से अभिमान का स्वरूप लेने लगती है। संगठन में चलने से हमारी नम्रता बनी रहती है, इसलिए जरूरी है। कई बार हमें लगता है ना कि भी टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है एक दो को अंडरस्टैंड करने में, परंतु वो वेस्ट नहीं है, वो जरूरी है एक दो को अंडरस्टैंड करना और मिल के साथ चलना, क्योंकि दुनिया के आगे भक्ति में क्या हुआ, एक ही महान बन के बैठे, एक गुरु एक संत, वो खुद महान बन के बैठे, बाकी कोई महान नहीं बने। जो गृहस्थी थे चेले थे वो जहां थे वहां ही रहे, वो एक ही महान बने। बाबा ने क्या कार्य किया कि बाबा एक अकेले महान नहीं बने, बाबा ने अपने साथ हरेक को महान बनाया, हरेक को ऊंचा उठाया। तो हम कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर ले, स्थिति के हिसाब से, सेवा के हिसाब से, यज्ञ में मान सम्मान के हिसाब से, लेकिन मुझे अपना बेस जो फाउंडेशन है वो याद रहे कि मैं इनकी बदौलत महान बनी हूं, सर्व के सहयोग से मैं इतना ऊंचे उठी है ना। क्योंकि दुनिया के आगे तो संस्था दिखाई देगी ना, व्यक्ति थोड़ी दिखाई दे, प्रभाव तो संगठन का होगा ना, यज्ञ का होगा। उस हिसाब से बाबा कहते हैं कि हमें मिलके चलना है, रिस्पेक्ट देना है, और हमारे रिस्पेक्ट देने से अपने आप को अपनी महानता में भी स्थित रहेंगे। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप नए नए को ज्ञान सुनाते हैं तो वो आपको इतनी ऊंची नजर से देखते हैं, आप में इतनी ऊंची भावना रखते हैं कि उसके कारण भी आप अपनी ऊंचाई में टिके रहते। देखो हम आपस में चार काम कर रहे होंगे तो साधारण स्थिति में होंगे, अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं है ना, कोई वीआईपी आ जाते हैं तो हम हरे कितने व्यवस्थित होके उसको मान देने लगते है ना। अभी अभी हम आपस में ऐसे ही साधारण चल रहे थे, कोई बात में हमारा बहस भी चल रहा था, टकराव भी चल रहा था, पर उसी के बीच कोई मान, कोई वीआईपी, कोई मेहमान आ जाता है नया, तो हम हर एक व्यवस्थित हो जाते हैं उसको मान देने लगे। तो जो उसको मान दिया वही हम आपस में देते तो हम सदा ही महान रहते ना, साधारण नहीं हो जाते। जैसे घर के अंदर क्या होता है, पति पत्नी दोनों कोई बात में बहस कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं है ना, पर अचानक कोई मेहमान आ जाता है तो दोनों उठ के क्या कहेंगे, प्यार से आइए आइए बैठिए है, खाइए पिए रहिए, दोनों कितना प्यार से बात करने लगते। तो भाई जो प्यार मेहमान को दिखाया वही आपस में दिखाते तो मीन्स मेरे में प्यार का गुण तो है जो मेहमान के रिलेशन में अप्लाई हो रहा है, पर आपस में क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों में गुण हैं, शक्तियां हैं, बाबा ने वर्षे में सबको सब कुछ दिया है, और हम महसूस करते हैं कि बात सही है। कोई नए आते हैं, अज्ञानी आते हैं, उसके सामने तो ये सब अप्लाई होता है, तो फिर आपस में क्यों नहीं अप्लाई होता है। हम आपस में भी वो अप्लाई कर रहे हैं, वही प्यार का गुण आपस में भी बात करने में अप्लाई कर सकते थे ना, तो बहस होती ही नहीं, टकराव होता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग बहुत जरूरी है ताकि हम डिटैच रहे, न्यारे रहे, अलौकिक बने रहे, स्व में फोकस्ड रहे, ताकि मैं रोज जिसके साथ रहती हूं, काम करती हूं, वहां भी मेरा व्यवहार साधारण नहीं हो जाए। वास्तव में आप देखिए हम सब नीचे कहां आते हैं, स्वमान से नीचे कहां आते हैं। दुनिया के आगे तो हम स्वमान में ही रहते हैं, ज्ञानियों के आगे हम स्वमान में ही रहते हैं, क्योंकि हमें स्पष्ट रेखा है कि इसको ज्ञान नहीं है, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। पर स्वमान की स्थिति से नीचे कब आते हैं, आपस में ही तो आते हैं, छोटी मोटी बातों में, चाहे लौकिक में जिसके साथ रोज रहते हैं, चाहे अलौकिक में जिसके साथ हम रोज सेवा करते हैं, या कार्य क्षेत्र में जिसके साथ रोज हम नौकरी धंधा करते हैं। तो हम सोच ले कि मैं रोज किस किस के साथ मैं काम करती हूँ, सेवा में, घर में, नौकरी धंधे में, मुझे उनको ऊंची नजर से देख। उनकी विशेषताओं को देखना है, उसकी वैल्यू को रियलाइज करना है, ताकि मैं उसी प्यार, एकता और सम्मान की भावना से चल सकूं। और जैसे बाबा कहते हैं कि माँ बाप है ना, तो वो अनुभव कि हम मात पिता है, तो बच्चे की कैसी भी चलन को, हरकत को, उनके बातों को वो टॉलरेट करते हैं, मन में समा लेते हैं और सदा बच्चों का शुभ सोचते हैं। इस प्रकार अगर हम जगत माता बन जाएं, जगत पिता बन जाएं, है ना, मम्मा का स्वरूप बन जाएं, बाबा का स्वरूप बन जाएं, वो स्थान हम ले ले, तो हम किसी की कोई भी बात को समा सकेंगे और फिर भी हम उसके लिए शुभ सोच सकेंगे, प्यार कर सकेंगे, मान दे सकेंगे। तो व्यक्तिगत ज्ञान की गहराई चाहिए, चिंतन चाहिए, अपने आप से बात करे, अपने आप में ज्ञान अप्लाई करे, बाबा से बात करे। और अभी जिस समय से हम पास हो रहे हैं, उसमें तो हर आत्मा इतनी नाजुक बन गई है। आजकल की जो बच्चे हैं, युवा है, नई पीढ़ी है, तो इतने डेलिकेट है कि उसमें जरा भी शक्ति नहीं है, है? उसको बहुत ही रिस्पेक्ट से चलाना पड़ता है, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि पहले हमें कैसे बड़े हमारे चलाते थे, हम कैसे चलाते थे, और अब जो भाई बहने हैं हमारे साथ, 200 भाइयों का संगठन है और बिल्कुल नए हैं, इतने कोई पुराने ज्ञान वाले नहीं। जब वो समर्पित होने आए थे 94-95 में, तो वो 2 साल 3 साल 5 साल से ज्ञान में चलने वाले थे, माना वो बिल्कुल नई पीढ़ी है, ज्ञान के हिसाब से भी नई पीढ़ी है, आयु के हिसाब से भी नई पीढ़ी है। तो बाबा कहते ना कि उसको सम्मान देकर फिर कोई बात दो तो वो सुन सकेंगे, वरना तो वो सुन सकते नहीं है, रिएक्ट करते थे। बाबा कहते ना, सम्मान दो, आप महात्मा हो, आप तो संत हो, पवित्र हो, फिर कहकर उसको बोलो कि फिर आप ऐसा ज्ञान क्यों देते, पहले उसको महानता में ले जाओ। तो आज रिलेशन, संगठन और सेवा में तो ये बहुत जरूरी है, तो क्लेश कम होंगे और हम काम कर सकते हैं फिर संगठन के साथ। तो बाबा मम्मा ने जो काम किया है वो अब हमें करना है, है ना? उन्होंने कैसे इस परिवार को चलाया, उन्होंने कैसे इस यज्ञ को चलाया, तो अब हमें करना है, अब हमें भी वही सिस्टम फॉलो करना है कि हमें भी इस परिवार को बनाए रखना है, चलाना है। तो हमारा आपस में एक दो का रिस्पेक्ट देना, वैल्यू करना, ये आवश्यक है, नहीं तो हम बिखर जाएंगे, हमारा संगठन नहीं बना रहे। आज दादियों में हम क्या देखते हैं, है ना, एक एक दादी व्यक्तिगत रूप से अपने आप में बहुत महान है, पर फिर भी एक दो को रिस्पेक्ट देते हैं, हाँ जी एक दो की बात मानते हैं, पहले आप पीछे में, तो ये हमें भी अब करना होगा। ओम शांति।